ARPA Radio Exclusive Interviews।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
अपने हाथों से देती हैं भविष्य को आकार, नारियां होती हैं समाज की वास्तविक वास्तुकार। रेडियो अर्पा 90.8 FM पर मैं हूं शुभ्रा आपके साथ, और विश्व नारी दिवस पर हम आज आपकी मुलाकात ऐसी युवा नारी से कराने जा रहे हैं जो नारी शक्ति की प्रतीक हैं। पुलिस विभाग में काम करते हुए देश और समाज के प्रति अपना दायित्व तो निभा ही रही हैं, सृजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। हाल फिलहाल में सेवा भाव की वजह से सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में छाई हुई ये नारी शक्ति हैं पूजा देवांगन, जो आरक्षक दूरसंचार छत्तीसगढ़ पुलिस के रूप में कार्यरत हैं। पूजा जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
पूजा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका अब तक का सफर कैसा रहा? जिस पद पर आप कार्यरत हैं वहां तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा?
मैम, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से 2012 से 16 तक की इंजीनियरिंग की हुई है। तो मेरा कभी प्लान नहीं था कि मैं पुलिस विभाग में जाऊं, या फिर कभी भी बचपन से एक सपना होता है या सपने का बहुत सारा पॉइंट होता है यार ये नहीं सोचिए ऐसा कुछ, तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं पुलिस बनने वाली हूँ या सोचा भी नहीं। तो जब मैं पढ़ाई करके कम्प्लीट करना आई तो मैंने एक साल कोचिंग की टेक्निकल फील्ड की, जिसमें मैंने पढ़ाई की हुई थी, उसी टेक्निकल फील्ड आगे तैयारी की। सिलेक्शन उनमें से किसी में भी नहीं हुआ, और फिर नॉन टेक्निकल में भी मैंने काफी कोशिश की, तो बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म भरती थी, शायद मुझे लगता है कि लगभग सारे ही भर देती थी। मुझे लगता था कि किसी में भी कुछ भी मिल जाएगा तो मैं कर ही लूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब।
अच्छा।
क्योंकि इससे पहले हमारे घर में दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, और आर्थिक तंगी का सामना मैं बचपन से बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो मुझे पता था कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रमुख मकसद रहा। और रही बात पुलिस विभाग आने की, तो मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया था, अनीता मैम जो मेरी कोच हैं और फिजिकल ट्रेनिंग देती हैं, तो उनके द्वारा मैंने ट्रेनिंग ली। लगभग 7 से 8 महीने तक के मैं कंटिन्यू करती रही, हालांकि उसके पहले ही मैंने सेल्फ किया, लेकिन वो उसमें इतना जोर नहीं था। मैम को ज्वाइन किया तो पता चला अपनी खामियां, और ये भी पता चला कि मैं ग्राउंड में एकदम बिल्कुल सबसे हटके हूँ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो एक धावक के पैर कैंची की तरफ अप एंड डाउन चलते हैं, बट मेरे केसेस में ऐसा नहीं था, मेरा पैर उठता नहीं था, और भी बहुत सारी खामियां थी, तेज नहीं कर दौड़ पाती थी, तो मेरा जो एक्टिविटी था वो बाकियों से सबसे अलग था, बट इतना था कि मैं कभी घबराती नहीं थी, और जब भी मैडम तैयारी करवाती थी तो मेरे मन में सिर्फ सामने का वो रास्ता रहता था जिसे तय करके उसी कंप्लीट पॉइंट में आना रहता था। कभी मैं बहाने नहीं मारती थी कि आज मेरा पेट दर्द दे रहा है, आज मुझे मरा मन नहीं है, या फिर या कुछ और भी, तो ये मेरा था कि चाहिए मतलब चाहिए। तो इससे पहले मैंने एग्जाम के तौर पे जो जिसे फिजिकल दिलाना होता है उसे नष्ट कर दिया था, तो ये जो पद होता है काफी छोटे स्तर का पद होता है, और उसके अलावा मैंने फिर वन रक्षक का पोस्ट के लिए भी एग्जाम दिलाया, उसमें भी दौड़ भाग का था, तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। फिर जिला बल जो रायपुर पुलिस या फिर अलग अलग जिलों के लिए जो कोर्स होता है उसके कांस्टेबल के लिए भी मैंने एग्जाम दिलाया, मैं उसमें 15 सेकंड से आउट हो गई, वो उसकी भर्ती रायपुर माना में ही हुई थी, 4th बटालियन में।
अच्छा।
फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद ही टेली कम्युनिकेशन का भी पोस्ट आया था दूरसंचार पुलिस का, तो उसे मैंने भिलाई में दिलाया था, भिलाई बटालियन में, और देखिए कि जिस जगह से मैं आउट होकर 15 सेकंड से निकली थी वहां मुझे ज्वाइनिंग मिली,
क्या
तो, तो ये बहुत अच्छा रहा मेरा। और इस पर भी बताऊंगी कि 2 दिन हुआ था ये दूरसंचार का जो एग्जाम है फिजिकल की बता रही हूँ, रिटर्न की तो बाद में हुई थी, तो फिजिकल पहले ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था 9 अगस्त 2018 को, और दूसरा था छत्तीसगढ़ के लोग ही बस उसमें एलिजिबल थे, वो 10 अगस्त को था, तो 9 अगस्त को मैं 1 सेकंड से आउट हुई थी। तो मेरे मन का मलाल सोचिए मैम, 1 सेकंड से आउट होना, आपके हाथ से जॉब जाना, मतलब कितना चीजें होती है कि आदमी बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, फिर वो नेगेटिव कंटिन्यूअसली देखते जाता है। फिर अगले दिन क्या हुआ कि मेरे ग्राउंड के 4 लोग मतलब 3 लोग मेरे अलावा वो भी आए हुए थे, वो भी उसका फॉर्म नहीं भरे थे 9 तारीख वाला, तो 9 तारीख वाले छत्तीसगढ़ के लेवल में हम चारों दौड़े, बट जो बैचेस होती है 50-50 की, मैं उस बैचेस में उनके साथ नहीं दौड़ी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि यदि मुझे किसी भी ट्रिप में दौड़ना है तो ये ना दिखे कि मैं किसके आगे हूँ किसके पीछे, क्योंकि जिनको मैं जानती हूँ यदि मैं उनके साथ दौड़ूंगी तो मेरा कंपेयर वही पुराने ग्राउंड वाला हो जाएगा कि अरे यार मैं इसके तो पीछे ही दौड़ती हूँ हमेशा, तो आज भी यदि आगे दौड़ रही तो मतलब मेरा तो पीछे ही होगा। तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी, और मैं हर जगह चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ अकेले रहूँ, अकेले उस ग्राउंड को समझूँ, अकेले उन चीजों को समझूँ, ताकि उसे मैं अकेले फेस कर सकूँ। यदि मेरी डिपेंडेंसी होगी तो मैं उन चीजों को कभी फेस नहीं कर पाऊंगी। तो उनके बैचेस होने से पहले मैं पहले ही दौड़ ली, और किस वजह से मैम 3:20 में 800 मीटर क्लियर करना था तो 3:17 में हो गया, जहां पर मैं 3:21 में एक दिन पहले ही 1 सेकंड से आउट हुई थी, तो 3:17 में मैंने 3 सेकंड से कवर भी कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था मैम, क्योंकि इसके पहले इतनी सारी असफलताएं थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर 1 महीने के अंतराल में रिटर्न एग्जाम हुआ, तो फिर और उसके बाद 20-25 दिन में फाइनल लिस्ट भी जारी हो गया, जिसमें मेरा गर्ल्स में सबसे पहला रैंक था और टोटल में से 16th रैंक था, जो कि मेरे सामने 15 लड़के थे ऐसा। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि पहली नौकरी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ये मेरा बहुत बड़ा दिन था।
तो पूजा जी, ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आप लगातार मेहनत करें, अगर किसी भी चीज को पाने के लिए आप शिद्दत से कोशिश करें तो वो चीज आपको हासिल होती है, ये बात आपने साबित कर दी एक बार फिर से। पूजा जी, नारी को हमेशा कोमल और सुकुमार समझा जाता रहा है, मगर जब आप जैसी नारी शक्ति से हम मिलते हैं या बातें करते हैं तो लगता है कि नहीं, नारी ही शक्ति है। परिवार के किसी ने आपको ये नहीं कहा कि भाई बहुत सारे और भी काम है और भी जॉब है, ये तो काम बहुत जोखिम भरा होता है पुलिस का, तो आप इसमें मत जाइए, ऐसा तो कोई बोलने वाला नहीं था आपके आसपास?
नहीं मैम, फैमिली मुझे शुरुआत से काफी सपोर्ट किया है, स्पेशली सपोर्टिव मेरी मम्मी रही है। एक माँ हमेशा चाहती है कि जिंदगी में वो जो चीजों से हार गई या फिर वो चीजों को फेस नहीं कर पाई या फिर पढ़ने नहीं दिया गया, वो चीजें वो अपने बच्चे में देखना चाहती है। तो मेरी मम्मी का हमेशा ये शौक ही रहना चाहिए, ड्रीम था कि मैं जॉब करूँ, पढ़ी लिखी भी है काफी, पर उन्हें वो मौका नहीं मिला, रीजन चाहे जो भी हो, तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं देखना चाहती थी। तो उन्होंने पहले से ही टारगेट सेट करके रखा था कि बेटा तुमको कुछ भी जॉब लेनी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए, यही तुम्हारा टारगेट है, तो उसके लिए जीतो और मेहनत करो, जो कर सकती हो करो, तैयारी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, मेरे को यही सुनना है कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब वाली है।
वाह वाह, क्या बात है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हैं आप, जब आपने एक वृद्ध महिला को हाथों में उठाकर माँ बम्लेश्वरी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी थी और उन्हें देवी के दर्शन कराए थे और उन्हें वापस भी आप लेकर आए थी, तो इसके बारे में हमें बताइए।
5 मार्च 2019 को ज्वाइनिंग हुआ था और उसके बाद हम कुछ महीने तक ड्यूटी किए, फिर हमारी ट्रेनिंग लग गई थी। ट्रेनिंग मैंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राजनांदगांव में की हुई है।
अच्छा।
तो 3 महीने का सफर होता है वो टेली कम्युनिकेशन का, बेसिक ट्रेनिंग का। उसी बीच में हमारी ड्यूटी डोंगरगढ़ में लगी थी, क्योंकि उस टाइम नवरात्रि था तो एक बहुत बड़े बल की जब जरूरत होती है तो ट्रेनिंग स्कूल से ही मैक्सिमम बल जाते हैं।
अच्छा।
तो वो एक अवसर था, सबसे पास भी था, तो इस वजह से भी हमें वहाँ ले गया गया। तो मेरी पोस्टिंग थी मतलब उस जगह पे, उस लोकेशन पे मेरी गर्भगृह में ड्यूटी थी माता के जस्ट सामने। तो उस दिन की बात है मैम कि मैं नीचे तरफ थी, मेरा ड्यूटी तो उस टाइम नहीं था, ऑफ था। मैं एक जाने माने लेखक हैं, मतलब काफी अच्छा लिखते हैं, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी, जिनको मैं बहुत समय से फेसबुक में फॉलो भी करती हूँ। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी इनसे मिलूं, मुझे मिलना है। तो मैं उनसे मिलकर आई और हम रोपवे के थ्रू ऊपर आए। रोपवे से हम जैसे ही वहां बढ़े तो मैडम भी थी उनकी धर्मपत्नी माधुरी अग्रवाल जी, तो उन्होंने मेरा ध्यानाकर्षण करते हुए कहा, देखो पूजा, वो कोई एक लेडी है जो चल नहीं पा रही है और कंधे में हाथ रख के उनके हस्बैंड चला रहे हैं, तो देखो कुछ हो सकता है। तो ऐसे कि मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि भीड़ होती ही काफी नवरात्रि के दिनों में, तो मैं रेंडमली ये चीजें सुनते ही तुरंत मैं उनके पास गई। तो मैंने देखा कि वो काफी कमजोर स्त्री है और इस स्थिति में उनका ऊपर जाना चलते हुए ये थोड़ा संभव नहीं है। फिर मुझे लगा कि चलो एक हाथ से मैं भी कंधे में सहारा दे देती हूँ तो शायद वो दोनों तरफ से चल पाएंगी। तो मैंने ये ट्राई किया, फिर वो लगा नहीं नहीं ये तो काफी टफ है इनके लिए। तो उस टाइम वो सोचता है कि इनको और कैसे ले जाया जा सके। मैंने तुरंत उनको दोनों हाथ से गोदी में उठाया और कंटिन्यू चलती गई, जितनी भी सीढ़ियां बाकी थी 80-90 जितनी भी थी। तो फिर माता के दर्शन कराए। आप ये बात तो समझिए मैम कि जब कोई व्यक्ति अपने लास्ट स्टेज में होता है और उसकी इच्छा होती है तो हम हर घर वाले यही चाहते हैं कि उसकी इच्छा की पूर्ति की जा सके। तो वो एक इच्छा के तौर पे आई थी, कि माता के दर्शन मुझे अंतिम समय में शायद होने चाहिए, पता नहीं मैं कब तक रहूंगी। तो उन्होंने दर्शन कराए थे, इवन दोनों हस्बैंड वाइफ के मतलब चप्पल भी नहीं उतरे थे और माता रानी के दरबार में थे वो। तो आप समझ सकते कि उस समय मतलब उनका माइंडसेट क्या रहा होगा, कितना दर्द रहा होगा, कितनी तकलीफें रही होंगी उस चीजों में। उनको ये ध्यान नहीं था कि दरबार में मतलब चप्पल नहीं आता है ना। तो हम फिर पुलिस बल की सहायता से चप्पल वगैरह बाहर निकाले, और जब तक मैं मैडम भगवान के पास पहुंच चुकी थी तब तक उनको शायद उतना होश भी नहीं था। और तुरंत फिर हम उन्हें साइड में बैठाए, उनके हस्बैंड भी बैठे, तो तुरंत वो जेब से बटुआ निकाल कर मुझे पैसे देने की कोशिश की कि देखो बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये रखो कुछ पैसे।
अच्छा।
तो चूंकि मैं इसे एक ड्यूटी की तरह मानती हूँ कि माँ के दरबार में ड्यूटी लगी है, तो मेरा फर्ज है कि यहाँ के श्रद्धालुओं को भलीभांति तरीके से मैं दर्शन कराऊँ। तो यहाँ पर पैसे का कोई खेल नहीं है, तो ये मेरे कर्तव्य का एक एक था, मौका था, तो मैंने वो निभाया और तुरंत पैसे के लिए मना कर दिया क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि मैं दर्शन कराऊँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया जैसा भी
जी, और अच्छी सोच है आपकी पूजा जी।
जी जी, और फिर मैं उसे उन्हें वापस से बोल उठाकर परामर्श केंद्र में ले गई। तो हम मुझे पता चला कि वो अस्थमा भी है उन्हें और वो लकवाग्रस्त भी है। और फिर ये इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट के सर ने बालिका जी ने पीछे तक फोटो ली थी मेरी, और वो अक्सर अपने नए लोगों से जब जुड़ते हैं मिलते हैं तो फोटो डालते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये बातें इतनी वायरल हो जाएंगी, नॉर्मल सा चीज था, लोगों ने इतना तो रहा कि अब मैं आपसे क्या कहूँ।
जी, हमने भी आपकी वो खबर देखी पढ़ी और लगा कि वाकई इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे, रेडियो अर्पण 90.8 FM पर मैं हूं शुभ्रा आपके साथ, और हमारे साथ हैं पूजा देवांगन, आरक्षक दूरसंचार छत्तीसगढ़ पुलिस। पूजा जी, समाज सेवा के प्रति आपका विशेष रुझान दिखता है मुझे, तो और भी कुछ इस तरह के काम आपने किए हैं सोशल वर्क?
मुझे शुरुआत से इसमें सेटिस्फेक्शन और आदमी को वही करना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से संतुष्ट
जी।
जॉब में आने के बाद मैं लोगों से जुड़ती रही और कुछ कुछ संस्थाओं में जाती भी रही, तो इस जुड़ाव के दौरान मैं समझ गई कि बहुत ऐसी समितियां होती है, संस्थाएं होती है जो ऐसे दिशाओं में काम करती है, किसी जरूरतमंद की हेल्प की बात कर रही हूँ विशेष तौर पर
जी।
तो सबसे पहले तो मेरा रुझान इसमें काफी समय से था, तो जब मेरी पहली नौकरी की जो सैलरी होती है वो आई थी तो मैं एक हिस्सा कहना चाहिए मतलब कुछ हिस्सा एक सही जगह पे लगाना चाहती थी। उन दिनों मेरी भिलाई में पोस्टिंग थी, तो वहां पर जो मानसिक तौर पे जो अक्षम बच्चे होते हैं उनके मैं स्कूल गई थी। मैं पहले काफी जगहों में मैं गई, पता किया कि क्या चल रहा है, कि क्या किया जा सकता है। तो मैंने वहां पर एक पंखा दिया था।
अच्छा।
क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जब स्टार्टिंग होगा तो मुझे इसका कुछ चीज कहीं सही जगह लगाना है। तो वो चीज मैंने किया था, फिर वहां की चीजों को समझा जाना, फिर और भी चीजें की। फिर जब मैं इन दिनों मतलब उस टाइम की बात है, रायपुर से भिलाई अप डाउन करती थी ट्रेन में, तो मुझे काफी सारे मतलब भिखारी जो भीख मांगते हैं उससे अपना गुजारा करते हैं ऐसे लोग दिखते थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो काफी सबल है, इनको तो मतलब कहीं दिशा मिल जाएगा तो इन लोग
कुछ अच्छा कर सकते
खाएंगे।
हाँ हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल, तो हाथ से लाने वाले काम से तो बेहतर ही काम करेंगे। तो फिर मैंने इसी बहाने दो लोगों का साथ दिया था, अपना नंबर खुद दिया, फिर उनको कहा एक के हाथ नहीं थे मतलब कि जो पाम होता है वो नहीं था, और दूसरे के जो थे वो आंखों में रोशनी नहीं थी। तो मैंने इसको संबंधित जो संस्थाएं होती है उसमें पहुंचाया, बात करवाया। खैर ये कहना इतना इजी है, बट इस बीच में मेरे को बहुत चीजें समझ में आने लगी कि कितने सारे संस्थाएं होती, कौन किस पे काम करता है, उनको वहां तक ले जाना, इनको सेटिस्फाइड करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है
जी।
और बट सक्सेसफुली शायद मैंने अपने तरफ से योगदान दिया, लेकिन आगे आगे अब उनकी सोच थी, अब फिर उन्होंने जैसा भी कोऑर्डिनेट किया मुझे ऐसा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है पूजा जी, आप तो बातें करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है?
मैं हमेशा से चाहती हूँ कि वैसे तो हम इस दुनिया में आते हैं अपने लिए ही आते हैं और अपनों के लिए आते हैं, पर इस अपने और अपनों को छोड़कर उन लोगों के लिए भी सोचा जाए जिनका कोई नहीं होता, या फिर जो उनके होते भी हैं लेकिन उनका कोई नहीं होता, तो वो उस दिशा में कोई भी अच्छे काम होंगे तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा चीज होगा और ये इसका मूल मंत्र भी।
जी, अब बहुत कम उम्र में आपको कई तरह के सम्मान मिले हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
सबसे पहले मुझे जब मैं 6 महीने के अंतराल में ही ड्यूटी हुई, मतलब पीरियड मेरा 4 ही महीना हुआ था लगभग, तो उसमें सम्मान एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे उसमें जो लिस्टेड लोगों थे, मतलब पुलिसकर्मी, उनमें मेरा नाम नहीं था, बट 2 दिनों में इतनी वायरल हो चुकी थी कि मेरा नाम सबसे लास्ट में डाला गया। और डोंगरगढ़ से उसी दौरान ड्यूटी के दौरान ही मुझे लाया गया और इन दिनों सम्मान मुझे मिला माननीय डीजीपी महोदय से। ये मेरा पहला सम्मान था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना बड़ा हो सकता है कि मुझे सम्मान मिले।
जी,
और इसके अतिरिक्त मुझे ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा भी मुझे प्रशंसा पत्र मिला है। और जो मैं रेडियो विभाग में हूँ उनके SP से भी मुझे प्रशंसा पत्र वित्त राशि भी मिली है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा मुझे जैसे शिक्षक सम्मान मिला है, कर्मवीर सम्मान मिला है, समाज में मैं अपने समाज में कई बार मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, 1 साल जिस दिन मेरा कंप्लीट हुआ जॉब का, उस दिन एक जोश 2020 एक शाम छत्तीसगढ़ पुलिस के नाम, जो कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास में, उसमें मुझे बेस्ट रोल मॉडल ऑफ फीमेल का अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था।
बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम रही हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जैसा कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे हैं, जिनके जवाब आपको एक शब्द में देने हैं। आप रेडी हैं?
हाँ बिल्कुल।
अगर मैं कहूँ एक शब्द में नारी को आपको डिस्क्राइब करना है, क्या कहेंगी आप?
जी, शक्ति।
पुलिस में ना होती तो क्या होती?
मैं टीचिंग फील्ड अपनाती।
आपकी इंस्पिरेशन?
मेरा सफर।
आपका फेवरेट फूड?
फेवरेट फूड मैम, मुझे कोई भी चटपटी चीज पसंद आती है।
वाओ। फेवरेट सॉन्ग?
दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा गाना है, आप हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाना चाहेंगी?
बिल्कुल मैम।
हाँ सुनाइए।
दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
पूजा जी, आप तो गाती भी बहुत अच्छा है, बहुत मीठी आवाज है आपकी, और क्या क्या आता है आपको, क्या शौक है आपके? और
मैम मेरा लिखने का बहुत शौक है, शुरुआत से मैंने बचपन से ही मैंने लेखन में कविताओं को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और अभी यात्राएं लिखना शुरू किया है।
तो कुछ कोई कविता हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी?
हाँ मैम, हाल ही में प्रकाशित 36 रागियां किताब में मेरी एक 2 रचनाएं हैं जिसमें से एक सुनाती हूँ। पहलू
बिल्कुल।
क्या किताबों को दुख होता है? क्या लेखने भी चोटिल होती है? क्या सोच के पर्याय भी होते हैं? क्या स्याही भी कभी सूखती है? सब कुछ होता है यदि तुम महसूस करो। महसूस करो कि हर लेखन कुछ कहता है, हर पंक्ति में कुछ होता है। लेखक लेखनी का स्वामी, हर पन्ने में नया स्वापन होता है। कभी मानव, कभी प्रकृति, कभी एहसासों की व्यथा, कभी कोई अनछुई सी कथा, कभी कहीं दूर चल रही रेल की आवाज में वह शांत का अनुभव करता है। कभी भीड़ से अलग बैठ भी वह शोर में खुद को पाता है। वो लिखता है, वो मिटाता है हर अनुभव, हर एहसास को। लेखनी में बांधता अनछुए पहलुओं को, गढ़ता बस लिखता जाता है।
वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लिखती भी बहुत अच्छा है आप। और हमारे जो श्रोता हैं या जो भी लोग हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की आप रोल मॉडल होंगी, क्योंकि आप युवा हैं और आपने अपनी मेहनत से ये मुकाम बनाया है। तो जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
मैम, एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर घर का होना जरूरी है, क्योंकि समाज घरों से मिलकर बनता है, समाज से घर नहीं बनते। तो किसी भी लेडी, स्त्री या पुरुष जो भी है, वो यदि आगे आना चाहते हैं तो उन्हें घर से निकलना होगा। निकलने का सिर्फ इतना है कि कुछ करने के लिए आगे बढ़ना होगा, स्वयं को प्रयास करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है, चाहे वो घर की हों या फिर बाहर की हों, उसमें हम बंद के रह जाते हैं और हम सोच नहीं पाते, क्योंकि उदाहरण वही व्यक्ति बनता है जो घर से बाहर होता है, बाहर निकलता है, कुछ करता है, क्योंकि घर में बैठे हुए लोग तो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो ये मेरा कहना है कि यदि आपको कुछ करना है, आप में टैलेंट है या फिर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आपको एक फोकस होकर तैयारी भी करनी होगी और उसके लिए आगे आना होगा। सोच लेने से कुछ नहीं होगा।
क्या बात है, सोच लेने से कुछ नहीं होगा। अच्छी सोच से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, बशर्ते आप पूरी शिद्दत से उसे पूरा करने में जुट जाएं। तो पूजा जी, आप जैसी युवा नारी शक्ति से बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। अर्पा रेडियो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैम, ये मुझे अवसर मिला ये, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो रेडियो अर्पा 90.8 FM पर अभी आप सुन रहे थे पूजा देवांगन जी, आरक्षक दूरसंचार छत्तीसगढ़ पुलिस से मेरी यानी शुभ्रा की बातचीत। और निश्चित रूप से आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में आप पत्र लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं, मैसेज आप भेज सकते हैं। और किसी नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।